IVM. Hello everyone, welcome. You're listening to a brand new episode of The Millennial Athlete with Tanvi and Shlok, a podcast of, for and by the millennials. I'm your host Shlok Ramchandran.
And I'm your co-host Tanvi Lad. Shlok, you know, as usual, I think I'm back to my Gyani mode today.
नहीं यार पहले नहीं मत पहले ही काफी मतलब इंडिया में काफी मतलब द स्टेट इज नॉट वेरी गुड एंड मतलब वी आर मतलब इन अ पॉजिटिव कर्व राइट नाउ बट मत यार मत प्लीज डोंट गो बैक टू योर ज्ञानी मोड नहीं हो पाएगा मुझसे
आई मीन व्हेन आवर प्रोड्यूसर यू नो इन्फॉर्म्ड मी अबाउट हु आवर गेस्ट ऑन द शो इज टुडे It, I mean, that mode just by default got a bit switched on because, you know, we cry and crib so much about not being able to train and, you know, the situation being so bad that the circuit isn't starting and 101 things to not be in the groove of training. But I think our guest today is an inspiration in herself. So no excuses from today onwards.
Yes, Tanvi. Today, our guest on our episode is none other than Sarita Chaure. She's 22, visually impaired para-athlete from Hoshanabad, Madhya Pradesh. In 2014, Sarita was given Braille and ICT-based training under SightSavers Inclusive Education Program. In 2018, Sarita participated at the 6th National Blind and Deaf Judo Championships and she returned with the bronze medal in the 44 junior category. A year later, she won the silver medal at the 7th National Blind Judo Championships. In 2019, she represented India and won bronze at the Commonwealth Judo Championships in Walsall, West Midlands, England. So, first of all, thank you so much, Sarita, aane ke liye. You know, we are honored ki aap aapka keemti waqt nikal ke hamare podcast pe aaye ho.
Thank you, sir.
Sir, nahi, Sarita, ma'am, sir, nahi, hame Shlok aur Tanvi bulao. Let's start karte hi aapka safar, jo aapka judo ka safar jo shuru hua hai, shuru se aapki sabse pehli memory kya hai judo ki?
सर सबसे फर्स्ट टाइम मैंने 2017 में ट्रेनिंग लेना शुरू किया था. उससे पहले हमारी जो हमें सेल्फ डिफेंस का इंस्ट्रक्टर कोर्स कराया गया था भोपाल में, तो वहां पर श्री भगवान दास सर विजिट के लिए आए हुए थे जो कि प्रेजेंट में मेरे कोच हैं. तो हमें बताया गया कि ये जूडो के कोच है, जूडो खिलाते हैं. तब मुझे लगा कि मुझे भी जूडो खेलना चाहिए. तो वहां से मैंने जूडो खेलना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया और फिर मुझे स्टेट लेवल पर खेलने के लिए मिला. तो स्टेट लेवल पर मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की. फिर उसके बाद में 6th नेशनल ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप जो कि लखनऊ में हुआ था, उसमें मैंने 44 केजी में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया. फिर उसके बाद में 7th नेशनल ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप गोरखपुर में हुआ था 2019 में, तो वहां पर मैंने सिल्वर मेडल अपनी स्टेट के लिए जीता. वहां से मेरा सिलेक्शन कॉमनवेल्थ ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप के लिए हुआ. वहां पर मैंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता. फिर उसके बाद में हैदराबाद में 2019 में ही नवंबर में 8th नेशनल ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप हुआ, वहां पर मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. अभी रिसेंटली मार्च 2021 में गोरखपुर में 9th नेशनल ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप हुआ, वहां पर भी मैंने सीनियर वर्ग में 48 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता.
क्या बात है,
ऐसे ऐसे चलता गया तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाएगा आपके अचीवमेंट से अगर ऐसे बात करते गए तो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2021 में भी आपको आपने मेडल लाया, होपफुली और बहुत मेडल आएंगे.
थैंक यू सर. थैंक यू
सरिता. जूडो जो स्पोर्ट है कॉम्बैट स्पोर्ट रहता है, राइट, लाइक बॉक्सिंग. तो उसमें काफी अपोनेंट को टैकल करना पड़ता है. इट्स क्वाइट अ फिजिकल स्पोर्ट, मतलब चोट भी काफी लगती है.
यस.
तो लड़कियों के लिए इट इज कंसिडर्ड कि यू नो अ डिफिकल्ट स्पोर्ट. तो कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि काफी चोट लग रही है, इंजरीज हो रहे हैं, कि काफी कठिन स्पोर्ट है लड़कियों के लिए?
जी, मैं मतलब शुरू जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना, तब मुझे बहुत टफ लगता था कि जैसे उसमें डायरेक्टली जैसे टेक्निक लगाकर थ्रो लगाना पड़ता है अपने पार को चित्त करने के लिए, तो मुझे लगता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। मुझे शुरू शुरू में मैं डरती भी थी कि मुझे चोट लग जाएगी, बट ऐसा अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है। लेकिन चोट लगने की संभावना होती है उसमें, यदि अपन प्रॉपरली करें तो बच सकते हैं उससे।
कभी कोई हुआ, कभी कोई बड़ी बड़ी चोट मिली है कभी, कि हमेशा इस डिफेंस एकदम तगड़ा रहा है आपका?
नो, अभी तक तो मुझे कोई चोट नहीं लगी।
अरे वाह, क्या
चलो
बात
अच्छी
है।
बात है। सही, तो अपने फैमिली के बारे में बताओ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पास 6 भाई बहन है टोटल?
जी, मुझे मिलाकर 6 भाई बहन है हम, और मेरे मम्मी पापा हैं, 8 मेंबर हैं।
तो आप सबसे बड़े हो?
नहीं, मेरे भाई है सबसे बड़े, फिर मेरी 2 सिस्टर है, और फिर मेरी 1 सिस्टर मुझसे छोटी है, और उससे छोटा मेरा भाई है। मेरी 2 सिस्टर भी जूडो, नेशनल जूडो प्लेयर है, वो भी ब्लाइंड है।
Oh, wow.
अच्छा, आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है सो फार आपके करियर पे?
जी, मतलब मैं शुरू में गांव पर स्टडी करती थी, तो फिर मुझे पता चला कि हमारे लिए स्पेशली ब्लाइंड स्कूल होता है, तो उसके बाद में हमने 8th से इंदौर में ब्लाइंड स्कूल में जाके ब्रेल लिपि से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में हमें फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया कि गांव पर लगता था कि हम पढ़ नहीं पाएंगे आगे, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में हम नहीं पढ़, जो लैंग्वेज होती है उसमें हम पढ़ नहीं पाते थे, तब पढ़ता था। तो जब हम वहां पर विशेष विद्यालय में गए तो वहां पर हमें ब्रेल लिपि सीखने को मिला। फिर उसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया, और फैमिली ने भी हमारा पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि होशंगाबाद से इंदौर दूर है, इसलिए भी तो बहुत सपोर्ट करते हैं। और जूडो में भी जब हमने कहा कि हमें जूडो खेलना है तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा।
ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। आई होप कि मतलब ऐसे ही सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यू नो स्पोर्ट्स में इनकरेज करे और यू नो कभी रोके ना। बट मुझे एक बात बताओ सरिता, जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और ये सब नेशनल टूर्नामेंट्स में रहते हैं, आपका कोई स्पॉन्सर है कि आपको अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है एकोमोडेशन और ट्रैवल वगैरह का?
जी, जब नेशनल स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की चैंपियनशिप जब हमारी होती है, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें दलित संघ एंड साइट सीवर ये हमें सब सपोर्ट करता है। बट जब मैं इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरा मतलब जो फीस वहाँ की थी तो वो 1,12,800 रुपये थी, तो वो इतना मतलब फैमिली से भी नहीं हो पाया था। तो उसमें मेरी सपोर्ट जो है, मेरी चौरे कुर्मी समाज संगठन जो हमारा है, तो उसने मेरी सपोर्ट की थी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से भी मांग की थी तो थोड़ा लेट हो रहा था, तो तब मेरी समाज ने मेरी फीस जमा कर दी थी। फिर उसके बाद में जब गवर्नमेंट से मुझे मिला तो मैंने मेरे चौरे समाज को वो पैसे वापस कर दिए थे।
लेकिन आपका फ्लाइट टिकट और स्टे जब आप वहाँ पे गए थे टूर्नामेंट के लिए, तब
जी वही पूरी फीस?
अच्छा, जो पूरी फीस थी आपकी एकोमोडेशन और फ्लाइट टिकट सब मिला के 1,12,800 थी
जी,
पूरी कंबाइंड
जी।
और फिर बाद में आपको गवर्नमेंट से वो रीएम्बर्स हुई, लेकिन शुरू में आपके जो समाज है चौरे समाज ने आपको मदद की थी, और उसके बाद फिर बाद में गवर्नमेंट से वापस मिल गई थी
जी। गवर्नमेंट से जो मुझे मिली थी तो मैंने मेरी समाज को रिटर्न कर दिया था।
बट ये गवर्नमेंट की तरफ से ये आपकी प्राइज मनी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो टिकट और इसके पैसे की वापस थी?
सर, टिकट थी जो
अच्छा,
जो मुझे मिली थी वो मतलब जाने से 4-5 दिन पहले ही मिल पाई थी।
अच्छा।
बट जो हमारी फीस जमा होनी थी वो 3 महीने पहले ही जमा होनी थी।
सरकार से कोई कुछ कुछ अनाउंस हुआ आपके मेडल पे
आने के बाद? कोई अलाउंस मतलब नहीं हुआ, कोई प्राइज नहीं मिला।
तन्वी, वुड यू लाइक टू यू नो शेड लाइट ऑन दैट?
आई मीन दैट्स द मैसेज वी आर ट्राइंग टू यू नो ब्रिंग आउट देयर, राइट? अ पॉडकास्ट लाइक आवर्स इज ट्राइंग टू पुट आउट स्टोरीज लाइक दिस, यू नो, विजुअली इम्पेयर्ड पैरा एथलीट गोइंग आउट देयर एंड एक्चुअली मेकिंग वेव्स ऑन द इंटरनेशनल सर्किट, विनिंग अ मेडल फॉर द कंट्री, and you know having to run from pillar to post to actually organize funds to you know even compete, travel, no prize money announced by the government when you come back to your country. Motivation wise, I don't really know where to start, because Shlok, we've been in a similar boat from time to time during our playing career, and I cannot stress the importance, you know, more about athletes needing, you know, sponsorship and funding and financial support being one of the paramount or, you know, one of the fundamental reasons as to athletes struggling to perform beyond a point. What do you have to say?
I mean, forget about sponsorships. I mean, when somebody, you know, if somebody comes from a normal sport and wins a medal at the Commonwealth, you know, whatever, I mean, there is some kind of prize money when you get, right? So why differentiate between judo and visually impaired judo? I mean, don't they deserve to get the prize money also? I mean, also, I mean, it doesn't have to be very big, right? Tanvi, it doesn't have to be 50 lakhs or like 75 lakhs, you know, you could give a smaller amount, but more than the amount, it is just the encouragement,
yeah, yeah,
the gesture. I mean, I feel it is high time that, you know, we look at such athletes, we look at such stories so that, you know, there will be more Sarita Chauris in the future. Right now, listening to this podcast, when Sarita is telling us that we didn't get, prize money wasn't announced, you know, so, you know, who will want to pick it up and who would want to do it? So, you know, that hence, you know, today's podcast was really important to, you know, get this, you know, story out that, you know, there's this young girl who is, you know, just doing phenomenally well in her sport. But, you know, I think the government, it could be central or state, whatever, is just not, you know, recognizing with the prize money which is being announced.
Yeah, hopefully things, you know, change. Someone out there hears the podcast and opportunities and some amount of funding does come Sarita's way. So that's a hope and a prayer.
Sarita, to aapke Commonwealth Judo Championships ke baare mein baat karte hai. Aapka kaisa tha? Aapka pura wo exposure, aapka सफर कैसा था कि मतलब आप पहले दिन जब से गए आपको जेट लैग हुआ नहीं हुआ आपने मतलब व्हाट डिड आप यू नो वर यू ओके आप खाना खाने से खाना का जो यूके में सिचुएशन था वर यू ओके विद दैट कैसा था आपका पूरा द होल एक्सपीरियंस होल यूके एक्सपीरियंस
यस वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ से इंडिया से इंग्लैंड के लिए जब गए थे तो फर्स्ट टाइम मुझे फ्लाइट में मतलब बैठने का मौका मिला था सो मैं बहुत एक्साइटेड थी और फिर उसके बाद में जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ का मौसम भी थोड़ा अलग रहता है और फिर उसके बाद में जब डिनर और लंच वहाँ पर मतलब एक होटल थी तो उसमें इंडिया के जैसा ही खाना हमें वहाँ पर मिल गया था हमारे सर लोग जो थे उन्होंने मतलब ऐसी होटल देखी थी कि उसमें मतलब दोनों जैसा खाना मिल जाए जो नॉनवेज खाना चाहे वो भी खा सकता है और जो वेजिटेरियन हो तो उसके लिए भी वहाँ पर खाना प्रोवाइड हो गया था तो खाने को लेकर कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आई थी
वो अच्छी बात है आपके फाइनल्स के बारे में बात करते आपका यू नो फाइनल्स का क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी जब आपने गए थे आपकी अपोनेंट या आपने आपकी अपोनेंट को देखा था पहले खेलते हुए क्या आप बहुत नर्वस थे वो आपका और मतलब आप जब आपको मैंने पता चला आप जीत गए ब्रॉन्ज मेडल तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था
मैंने पहले तो मतलब मेरी जो मैंने नहीं देखा था उनको मुझे नहीं पता था बाद में भी मुझे उनका नाम नहीं पता तो मैं अपनी फाइट पर ध्यान
बेस्ट कॉन्फिडेंस
मैंने मतलब मेरी फाइट होनी थी तो मैं यही ध्यान दे रही थी बस मुझे मेडल लाना है किसी तरह भी अपनी कंट्री के लिए मेडल लाना है मुझे जीतना ही है भले से वो कोई भी हो
कौन थे अभी भी नाम नहीं पता
नो सर नहीं पता
कौन सी कंट्री की थी वो तो बता दो
तो नहीं पता रियली मुझे
चलो कोई बात
अभी मैं ये इम्प्लीमेंट करने वाली मैंने बहुत बार डिसाइड किया है कि मैं ड्रॉ नहीं देखूंगी मैं सीधा जाके मैच टाइमिंग देख के आई विल प्ले द मैच बट दिस इज टेकिंग इट टू अ होल न्यू लेवल की अपोनेंट मालूम नहीं है मैच के बाद अपोनेंट का नाम मालूम नहीं
है चलो कंटिन्यू करो मतलब कैसा था आपका ब्रॉन्ज मेडल आपका जब आप यू नो कर रहे थे आपका ब्रॉन्ज मेडल मैच का एक्सपीरियंस
जब मेरी मतलब जब मैं वहां पर मैट पर गई तो और मुझे यही था कि मुझे जीतना है बट मैं फर्स्ट बाउट हार गई फिर उसके बाद में मेरी सेकंड हुई वो मैं जीत गई फिर एक और मेरी बाउट हुई वो मैं हार गई, फिर एक और जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए लास्ट हुई वो मैं जीत गई, तो ब्रॉन्ज मेडल मेरा है।
कैसा था वो जो फर्स्ट मोमेंट जब आप जब रेफरी ने अनाउंस किया कि आप जीते, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आया था?
मेरे कि मैं यहाँ पर आई थी जिस उद्देश्य के लिए, वो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ कि मैं देश के लिए मेडल लाना चाहती थी और वो मैंने ले लिया।
इससे बेटर बात क्या हो सकती है तन्वी?
Yeah. और सरिता, आगे जाके आपका मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट बिग गोल ऑन योर माइंड?
मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बार मैं इंटरनेशनल लेवल पर गई थी सो ब्रॉन्ज मेडल आया, लेकिन अब मैं जब भी मुझे जाने का मौका मिलेगा इंटरनेशनल, तो मैं अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहूंगी।
वाह, काफी स्ट्रांग, मतलब क्लियर है कि गोल्ड के नीचे कुछ नहीं, मतलब दिस इज अ वेरी ड्रिवन एथलीट। एंड आई मीन ऑन दैट नोट वी शुड टेक आर फर्स्ट ब्रेक। ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक वील टॉक टू सरिता अबाउट हाउ कोविड हैज अफेक्टेड हर ट्रेनिंग एंड यू नो व्हाट हैज शी बीन अप टू ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, यू आर लिसनिंग टू द मिलेनियल एथलीट विद तन्वी एंड श्लोक। वील बी राइट बैक।
Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, PayPal, and Seattle. Thank you. We really do appreciate the support. So this week on Cyrus Says was great. We had Meghna joining us on Cock and Bull, Tanveer Taj and Priyanka Jenna talking about pets. Huma Qureshi talks about her new television show and her life in Bollywood. And to celebrate 700 episodes on Cyrus Says, we had a number of his previous producers come on board and reminisce. Tune into This Round Is On Me, where Gauri Devidayal was joined by Sameer Sheth and Yash Panage. These are the guys who started Bombay Canteen, O Pedro, and a number of other restaurants. Really great conversation they had with Gauri. On The Habit Coach, Ashton Doctor tells us about nourishing creativity and the importance of losing and some micro habits to counter overthinking. On their 75th episode, Ritasha and Rayushi talk to Naveen Richards. On The Note with Monica Nayad, she speaks with Komal Nahata to talk about the business of Bollywood, lockdown losses, piracy issues, and experiments being done to keep it going. On Advertising Is Dead, Varun is joined by Guru Bhatt, VP of Customer Success Platform for PayPal India, to talk about how the digital money landscape and the fintech ecosystem has fundamentally altered the world. We also have Thalerate, our Kannada podcast. Hosts Ganesh and Pavan discuss video games, and Sivakamyam Sabatham, the Tamil show where Kavita Jeeva sheds light in another story about the bravery and excellence in the governance of the Pallava dynasty. And with that, let's get you back to your show.
Welcome back. You're listening to The Millennial Athlete with Tanvi and Shlok. We still have Sarita Chaure on as our guest today on the episode.
Sarita, आपने mention किया कि आपके दो siblings भी visually impaired para athletes हैं, judokas.
जी.
तो आप उनके साथ sparring तो घर में ही करते होंगे?
Yes. जब हम लोगों की मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारा मैच है, तो हम लोग उससे पहले से ही मैं और मेरी जो दोनों दीदियां सिस्टर्स हैं, तो हम तीनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिस करते हुए।
तो मतलब लॉकडाउन नो लॉकडाउन कुछ ज्यादा फर्क ज्यादा पड़ा नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि घर पे ही स्पारिंग है, तो इतना मतलब ट्रेनिंग कैसी इफेक्ट हुई आपकी कोविड के टाइम?
सर, ट्रेनिंग जो हमारे दलित सिंह मैं साइड से करती थी, जो ट्रेनिंग समय मिलती है अब वो हमें नहीं मिल पा रही है, और फिर कोविड के कारण ये भी है कि जो ये कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो आगे बढ़ जा रहे हैं, तो इसलिए कोविड का इस पर तो इफेक्ट पड़ा है कि हमें ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है।
तो कितना टाइम हो गया आपको लास्ट मतलब वो ट्रेनिंग लेके?
अभी फरवरी में हुई थी हमारी ट्रेनिंग, मार्च में कंपटीशन था।
अच्छा, फरवरी मतलब उसके पहले कितना बड़ा ब्रेक था जब पहली बार लॉकडाउन अनाउंस हुआ था?
और उसके पहले सर एक साल से ऊपर हो गई थी।
अच्छा, कैसे रखते हो आप मोटिवेशन जब भी आपको अभी पता नहीं है कि अगला टूर्नामेंट आपका कब है, क्या है आपको? तो भी आप घर पे हो लेकिन तो भी आपको अपनी आपके फिजिक का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप मतलब कैसे, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड इन सच टफ टाइम्स?
सर, हमें पता नहीं रहता है कि हमारा अगला टूर्नामेंट कब होगा, बट हम लोग तैयार रहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह और टेक्निक की प्रैक्टिस भी हम साथ में सिस्टर के साथ कर लेते हैं, तो करते रहते हैं कि जब भी होगा हम लोग अभी से मतलब अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं, होगा तब वहाँ पे फाइट करेंगे और लेकर आएंगे मेडल।
क्या बात, तो अभी आपका जो अभी आप घर पे हो तो आपका डेली अभी स्केड्यूल कैसा चल रहा है? दीदियों के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका डाइट?
एक दिन सरिता चौरे के एक दिन में क्या होता है शुरू से सुबह से रात तक, आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहोगे?
सुबह सुबह जब मतलब पहले हम उठते हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करना हो, फिर उसके बाद
कितने बजे उठते हो?
सर अभी तो मैं 6 बजे उठती हूँ, 7 बजे तक, 7-7:30 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर उसके बाद में पढ़ना और फिर अपना काम करना, फिर शाम को भी हम प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटे 1 से 1.5 घंटे, और पढ़ाई साथ में चल रही है तो पढ़ना भी रहता है।
कोई फिजिकल ट्रेनिंग करते हो बीच में?
नहीं मतलब बीच में हम लोग सुबह शाम बस करते हैं, दोपहर में नहीं करते।
मैट में करते हो, मतलब पूरा आपकी ट्रेनिंग मैट पे रहती है?
नो सर, घर पे हम बिना मैट के करते हैं। अच्छा, घर पे मैट नहीं है।
अच्छा,
ट्रेनिंग जब हमारी होती है, जब कैंप्स लगते हैं तब हम मैट की प्रैक्टिस करते हैं।
ओके, और आप क्या पढ़ रहे हो अभी?
मैं माता जीजाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर से बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ।
तो आपकी फाइनल एग्जाम्स अभी आने वाले?
जी जून में।
और आपको उसके बाद मास्टर्स भी करना
है? यस।
क्या बात है, पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लाओगे, जूडो में भी गोल्ड मेडल लाओगे। बहुत बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब यू नो आपसे ये सीखने मिल रहा है कि मतलब नो मैटर जो भी सिचुएशन है, यू आर ट्राइंग टू मेक यू नो द फुल यूज ऑफ इट। एंड जैसे तन्वी यू सेड अर्लियर दैट वी टेंड टू क्रिबल ऑट, राइट, दिस इज नॉट देयर, दैट इज नॉट देयर, बट हियर यू नो शी इज यू नो looking forward to everything, you know, being it studies or, you know, as she said that, जो भी हो मुझे रेडी रहना है अगले बाउट के लिए और मुझे इंडिया के लिए मेडल लाना है। यू नो आई थिंक ऑल आर लिसनर्स, स्पेशली द यंगर वंस, कैन टेक नोट ऑफ इट दैट यू नो दैट नो मैटर वॉट यू नो द मोटिवेशन हैज टू कंटिन्यू इफ यू हैव टू प्ले एट दैट लेवल एंड यू वॉन्ट टू अचीव यू नो वॉट एवर यू हैव सेट यू नो देर शुडेंट बी एनी lack of motivation, it should just come from within, for like how Sarita you know it's coming from within, like I have absolutely no doubt that she's not like forcing it, it's just coming naturally.
Absolutely, I think resilience and the never say die attitude is very very evident, and I would urge all our millennial listeners to keep at it. Lockdown, no lockdown, tournaments, no tournaments, I think the attitude will see you through and you'll be a winner, you know, in the larger picture you will emerge, you know, victorious. So just keep at it.
On a side note, I would like to give a shout out to Sight Savers though. I mean, they've done such a phenomenal job. So those who do not know about Sight Savers is a global development organization that has been working in India since the 1996 to eliminate avoidable blindness and to ensure that people who are irreversibly blind are supported adequately to lead independent lives with dignity. The Delhi-based NGO works in 100 districts across 8 states of India in the field of eye healthcare and bring educational support, counseling, training and leadership development to visually impaired people. We need more organizations like this, and hats off to Sight Savers. I think you guys are doing a phenomenal job. I just hope that you could unearth more Sarita Chaures in the future.
Yeah, and I mean, it was at one such self-defense camp that was organized, you know, to help younger girls get, you know, just develop self-confidence and be in control of their own defense. It was a camp, you know, organized by them, which is where Sarita was discovered. So yes, please keep up the good work, Sight Savers, and we do need more NGOs and organizations like you. But coming back to Sarita, Sarita, आपने Fogart Sisters के बारे में सुना होगा?
Yes.
So आपकी story मतलब काफी और on the same similar lines. It's all a home affair. आपके role models कौन हैं? आपके और आपकी दीदियों के role models sports में कौन कौन है?
मैम, जूडो में तो अभी तक मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर बहुत, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
क्या बात है,
कभी मिलो उनसे।
और कोई नहीं पसंद, सिर्फ सचिन पाजी पसंद है।
यस।
विराट नहीं, विराट भी आजकल काफी फैशन में
नहीं, मैं सचिन की फैन हूँ सचिन सर की.
कभी कभी चांस मिला है मिलने का सचिन सर?
नो सर.
सर नहीं पहली बात तो एनी ऑफ आवर लिसनर्स मतलब कभी भी अगर कोई भी लिंक हो आपका सचिन सर का मैनेजर भी सुन रहा है प्लीज़ सरिता चौरे बहुत बड़ी फैन है एंड शी इज़ डन द नेशन एज प्राउड एज व्हाट यू नो सचिन हैज़ डन सो प्लीज़ इट आई नो वी वुड बी ग्रेटफुल इफ एनी ऑफ द लिंक्स कुड यू नो लीड सरिता टू यू नो जस्ट अ फॉर्मल हाई हेलो विद सचिन तेंदुलकर. So if this happens, Tanvi, then I would know for sure that our podcast is going up and above.
I think that's a stronger measure of our success rate than our listenership or social media likes. I think if we're able to get Sarita a meeting with Mr. Tendulkar.
But one can dream.
Sure.
Kabhi na kabhi to hoga. Bilkul hoga.
Yeah.
Sarita, you know, just one thing, if you have, matlab aap bolna chahoge, you know, to aspiring athletes, main sirf visually impaired athletes ko nahi bol raha hu, main koi bhi athlete ko bol raha hu, aap agar ek advice dena chahte ho sabko, to wo kya rahegi aapki taraf se?
Main sabhi ko ye kehna chahungi ki koi bhi situation ho, yadi hame कुछ भी चीज मतलब हमने हमारा गोल तय कर लिया है कि हमें उस गोल तक पहुंचना है तो सिचुएशन कोई भी हो हमें मेहनत करनी करते रहना चाहिए हमें कभी ना कभी वो प्राप्त हो ही जाएगी.
Awesome.
You want to add Tanvi something to that? मतलब to this you can add to this.
I mean like I said at the start I am absolutely inspired motivated and I have sworn not to complain from today onwards. I had absolutely have no excuses. Lockdown, no lockdown. The situation is grim, but keep up the hard work is going to be the mantra going ahead. I'm absolutely inspired by Sarita and her story. So that's about it.
So I'm going to stress this out once again. So if any potential sponsors, you know, want to, you know, give out funds, you know, please look at athletes like Sarita Chaure. They need it the most. You know, you could get in touch with Sight Savers and do your bit. And just because it's an unconventional sport, you know, you can do your bit and, you know, you could just, you know, support them. It doesn't matter how much you support, just, support will be, you know, of great encouragement of them. Thank you so much, Sarita. Millennial Athlete with Tanvi and Shlok pe aane ke liye. आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. कुछ आपको कैसा लगा पॉडकास्ट पे आने में?
थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगा.
बस और कुछ नहीं, इतना ही बोलूं. मतलब थोड़ा तो और बोल लेते लेकिन नहीं कोई बात नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था. With this we come to an end of another episode of the Millennial Athlete with Tanvi and Shlok. If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to all of them on the IVM podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow IVM on their social media handle, that is @IVMPodcasts on Twitter and Instagram. If you want to reach out to us, you can find me with the handle @SHLOKH95 on Twitter and Instagram.
And you can write to me on TanviLad93 on Instagram and Twitter.
Until then, ciao. We shall be back very soon with another fresh episode of The Millennial Athlete with Tanvi and Shlok. Thank you, everyone.
If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh, fans' point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.
Namaskar, dear friends. My name is Ashish Vidyarthi. Life, as you know, is a journey. And you and I, travelers, how can we celebrate this travel? I have a podcast for you, Begin the Journey. I share stories and moments from my life. Do tune in every Monday and Thursday to listen to my podcast on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. Cheers.